धवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् सयलिंदविंदविंदिय महिनंदिय भौवपौमवनसंडम् अहिनंदन जिननाहं नमियून वक्कमं वोच्छं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो शेष अनुयोग द्वारों में से अभी अपना उपक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है, और इस 15वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 41 पर हम आगे 41। ये उपक्रम क्या है उसकी हम चर्चा कर रहे थे विषय परिचय में, उसमें विषय परिचय का पेज नंबर 5 था। देखो ये एक पैराग्राफ हमने उसमें से वो पहले पढ़ भी लिया था। उपक्रम का अर्थ क्या है कि बंद होने के द्वितीय समय से लेकर सत्व स्वरूप से स्थित कर्म पुद्गलों के व्यापार, व्यापार है ना, उसका क्या है अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्ण जो कुछ बातें होगी उसकी बात है यहाँ पर। अब 6 नंबर पेज पर वहां उदीर्णा की बात भी हमने पढ़ी थी। उदीर्णा कब शुरू होगी, तो बंधावली के बाद, यानी जिसकी बंध के बाद आवली पूरी हुई है। अब बंध के बाद सारे एक एक समय पर, बंध के समय उसकी निषेक रचना वगैरह होती है और वो सत्ता वाले निषेक कहलाएंगे। तो सत्ता में जो है वो कभी पूर्व में बंधे हुए भी परमाणु है यानी निषेक है, कभी अभी अभी बंधे हुए भी है, यानी वो सब मिलकर ये सत्ता वाले निषेक हो जाते हैं। तो जिन जिन की आवली पूरी हुई है, तो किसी को हो सकता है कि 1000 वर्ष हुए बंद कर, किसी के हो सकता है कोड़ा कोड़ी हो गए, तो उनकी उदीर्णा होगी यानी कि वो अपकर्षण होकर उदयावली में मिल जाएंगे। इसको फिर पढ़ते उदीर्णा वाला पैराग्राफ 6 नंबर पेज पर। उदयावली बाह्य स्थिति को आदि लेकर, स्थिति यानी निषेक, यानी स्थिति ने जो कौन से निषेकों में से उदीर्णा होगी उसकी बात है। वो निषेक कहाँ पड़े हैं, परमाणु कहाँ पड़े, कौन से निषेक में, तो कहते उदयावली के ऊपर के निषेकों में। तो उदयावली के ऊपर एक समय ऊपर होगा या अनेक समय ऊपर होगा। तो उदयावली बाह्य स्थिति को आदि लेकर आगे की स्थितियों के यानी ऊपर के निषेकों के बंधावली अतिक्रांत प्रदेश पिंड का, क्योंकि जो एक एक समय में बनते हैं तो वो सारे ही सत्ता के निषेकों में मिल जाते हैं। यानी एक जो सत्ता वाला निषेक है, उस सत्ता वाला निषेक में अलग अलग समयों में बंधे हुए परमाणु पड़े हैं। तो जिन परमाणुओं की आवली बीत गई है बंध के, ये उसका अर्थ है। बंधावली अतिक्रांत का अर्थ है जिन परमाणुओं का जिन निषेकों में पड़े कहीं पर भी हो और आवली पूरी हो गई है। पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रतिभाग से या असंख्यात लोग प्रतिभाग से अपकर्षण करके, यानी उनका अपकर्षण होता है तो उसके लिए कौन सा भागाकार है उसकी बातें यहां बताई। एक्चुअली अपकर्षण होता है उसके लिए अपकर्षण भागाकार होता है, और वो जो एक पिंड हुआ उसको फिर पल्ले के असंख्यात विभाग से भाग देंगे या असंख्यात लोग से भाग देंगे, जहां जितनी विशुद्धि वगैरह है उसके सारे निमित्त बाद में बताएंगे। तो उतना द्रव्य यानी उतने परमाणु उदयावली में दिए जाते हैं, तो कहते करके उसको उदयावली में देना इसे उदीर्णा कहा जाता है, क्योंकि बाकी बहुभाग है वो उपरितन स्थितियों में उदयावली के ऊपर विशेषहीन क्रम से दिए जाते हैं। और एक प्रदेश पिंड है जो एक भाग जितना बताया वो उदयावली में आवली प्रमाण निषेकों में दिया जाएगा। अभिप्राय यह है कि उदयावली को छोड़कर आगे की स्थितियों में से यानी ऊपर के निषेकों में से प्रदेश पिंड को खींचकर उसे उदयावली में प्रक्षिप्त करने को उदीर्णा कहते हैं। ये खींच कर देते हैं वगैरह कहने का ये तो वाक्य रचना है, कहने की पद्धति है। उसकी स्थिति इतनी घटती है कि तो उदयावली में आकर जुट जाते हैं। वह दो प्रकार की है, एक एक प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। वो तो बताएंगे अभी किसको क्या कहना। एक एक प्रकृति उदीर्णा की प्ररूपणा में प्रथमतः उसके स्वामियों का विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों की उदीर्णा के स्वामी का निर्देश करते हुए बतलाया है। देखो उसका उदय कब से, तो अनादि से है, बंद भी दसवें गुणस्थान तक चल रहा है और दसवें गुणस्थान में उसकी उसका उदय है, तो उदय है तब उदीर्णा भी चल रही है। तो कब तक उदीर्णा होगी, क्योंकि अभी उदय कब मिटने वाला है, बारहवें तक उदय है, तो बारहवें के अंतिम समय में उसकी उदीर्णा नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही निषेक है। आवली पहले भी उसकी उदीर्णा नहीं हो सकती, क्योंकि आवली के ऊपर निषेक ही नहीं है। तो आवली प्लस एक समय जब बाकी रहेगा बारहवें गुणस्थान में, तो अंतिम उदीर्णा हो जाएगी उसकी, वहां उदीर्णा रुक जाएगी, उसको कहेंगे उदीर्णा की विच्छित्ति हो जाएगी। यही कह रहे हैं, इन कर्मों की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक होती है। यानी अनादि से चल ही रहे ना, अनादि से उसका उदय भी है उदीर्णा भी है, कहां तक चलेगे, बारहवें गुणस्थान तक। विशेषता इतनी है, यानी क्या उसमें विशेष बात है, क्षीण कषाय के काल में एक समय अधिक आवली मात्र शेष रहने पर उनकी उदीर्णा विच्छिन्न हो जाती है। ये यहां तक समझ में आएगा। तत्पश्चात एक एक प्रकृति उदीर्णा विषयक एक जीव की अपेक्षा काल और अंतर, यानी लगातार कितने काल तक होगी, उसमें अगर अंतर पड़ेगा तो क्या होगा, तथा नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, ये सब विस्तार से बताएंगे। विषय क्या आएगा, बस यहाँ इतना, यहाँ इंट्रोडक्शन है। नाना जीवों की अपेक्षा काल और अल्पभूतव की प्ररूपणा की गई है। जैसे हम कहेंगे नाना जीवों की अपेक्षा, तो उदीर्णा वाले जीव हमेशा ही रहेंगे ज्ञानावरण दर्शन वाले, ख्याल में आती बात। हाँ, नाना लिखा है, देखो नाना जीवों की अपेक्षा उसके अंतर की संभावना ही नहीं है, क्योंकि अनेक जीवों की अपेक्षा, अरे मिथ्या तो में ही हमेशा है, और बाकी भी गुणस्थान जो निरंतर गुणस्थान है उसमें भी हमेशा जीव रहेंगे। एक एक प्रकृति का अधिकार होने से यहाँ भुजाकार पद निक्षेप और वृद्धि उदीर्णा की भी संभावना नहीं है। अब उसकी चर्चा जब भुजाकार अन्य अन्य प्रकृतियों की अपेक्षा से वो बात घटित होगी, तो ये हो गए एक एक प्रकृति उदीर्णा, यानी ज्ञानावरण की अलग, दर्शनावरण की अलग वगैरह। प्रकृति स्थान उदीर्णा की प्ररूपणा में स्थान समुत्कीर्तना करते हुए मूल प्रकृतियों के आधार से ये पांच प्रकृति स्थान बतलाए गए, नंबर ऑफ प्रकृतियां। यानी जहां आठ प्रकृतियों की उदीर्णा रूप एक स्थान है, आयु के बिना शेष सात प्रकृतियों रूप दूसरा है, तो आयु की भी हमेशा उदीर्णा होती रहेगी कि नहीं होगी, होगी, कब रुकेगी, मरण के आवली प्लस एक समय, तब उसकी अंतिम एक आवली। अभी हमारे मनुष्य आयु, अभी मान लेते कि मेरी आयु एक आवली बाकी है, तभी निषेक कितने हैं आवली प्रमाण, तो अभी उसमें उदीर्णा का सवाल नहीं है। अभी दूसरे आगे के भव की बांधी है, परंतु उसका उदय होगा तब उसकी उदीर्णा, यानी उदीर्णा तो पहले समय से शुरू होगी और मरण के आवली पूर्व। हाँ, और आवली ऐसे भी है, आयु की उदीर्णा की विच्छित्ति कब होती है, छठी गुणस्थान, छठी गुणस्थान तक ही उदीर्णा है। आगे उसका उदय है, चौदहवें तक उदय है, परंतु उदीर्णा छठे तक होती है। उदीर्णा करते ऊपर के कुछ परमाणु नीचे आके मिलना, ये इसी को उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा होने से कुछ आयु में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं, इसको स्थान के ना कितने प्रकृतियों की उदीर्णा होती है, आठों की हो रही है। आयु बिना शेष सात प्रकृतियों रूप दूसरा, उसके कौन स्वामी है वो बताएंगे। आयु और वेदनी के बिना शेष छह प्रकृतियों रूप तीसरा, ये नहीं, छठे तक उनकी उदीर्णा है तो सातवें आठवें नौवें में सब इनकी उदीर्णा चलेगी। मोहनीय आयु और वेदनीय बिना शेष प्रकृति रूप चौथा। अब मोहनीय का उदय कहाँ तक है? तो दसवें तक है, तो उसकी भी उदीर्णा कब रुकेगी? दसवें में आवली प्लस एक समय बाकी है, तब उसकी अंतिम उदीर्णा होगी, उसके बाद मोहनी की उदीर्णा नहीं होगी। अब आयु और वेदनी की पहले रुक गई है छठे में, तो दसवें के आवली शेष रहा, तब से लेकर तीन बिना पांच की उदीर्णा हो रही है। पहले आठ वाली, फिर सात वाली, फिर छह वाली, फिर ये पांच वाली, वो तीसरा चौथा हो गया। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयु और अंतराय के बिना शेष दो प्रकृतियों रूप पांचवा, देखो अब केवली भगवान है, तो केवली भगवान पहले मोहनी आयु वेदनीय तो रुक ही गई है, तो केवली के तो ये कर्म ही नष्ट हो गए, या बारहवें गुणस्थान के एक आवली बाकी है, तब ज्ञान और दर्शन और वेदनीय इसके नहीं, नहीं देखो मोहनीय आयु और वेदनीय दस बारहवें के अंत में वो भी रुक गई थी, वो नहीं है अब तेरहवें में, तो नष्ट ही हो गए ना, वो तो नहीं नहीं है, परंतु ये तो भी ये सभी चले गए, ज्ञान और दर्शन और वेदनीय मोहनीय आयु अंतराय, यानी बारहवें के अंतिम आवली में इन किसी की भी उदीर्णा नहीं है, तो किसकी उदीर्णा रहेगी? नाम और गोत्र की रह जाएगी, वो कब तक होगी? हाँ तेरहवें में उदीर्णा की विच्छित्ति हो जाती, आवली पहले क्यों कहा? उसका उदय रुकने वाला है, उदय रुकने वाला है पर सत्ता में है, यानी उसके अंतिम समय तक उदीर्णा कह सकते हैं। अभी वो कहाँ है क्या है उसकी बात चर्चा करेंगे बाद में। देखो यहाँ स्वामित्व की बात बता रहे, हम पढ़ेंगे यहाँ से स्वामित्व प्ररूपणा में, यानी अभी अब पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान जो बताया है उसमें स्वामित्व की अपेक्षा बताया कि इनमें से प्रथम स्थान जिसका आयु कर्म उदयावली में प्रविष्ट नहीं है ऐसे, यानी आयु कर्म जो उदयावली में प्रविष्ट होता है तो उदीर्णा रुक जाती है, जिसका नहीं हुआ ऐसे प्रमत्त यानी मिथ्यादृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक प्रमाद युक्त जीव के होता है, क्योंकि अप्रमत्त के आयु की उदीर्णा नहीं होती और ऊपर भी कहीं नहीं होती। द्वितीय स्थान भी उक्त जीव के ही होता है, परंतु उसके अभी आयु को आवली से अधिक समय बाकी है, यानी उसके मरण को उसके ये इनकी होगी विशेषता, केवल इतनी कि उसका आयु कर्म उदयावली में प्रविष्ट होना चाहिए। पहला आठ वाला जिसको उदयावली में प्रविष्ट नहीं है, और ये वाला जिसका उदयावली में प्रविष्ट है। तीसरा स्थान सातवें गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक होता है, क्योंकि यहाँ वेदनीय की भी उदीर्णा रुक गई है आयु के साथ साथ, तो छह वाली हो। चौथे स्थान का स्वामी छद्मस्थ वीतराग यानी उपशांत कषाय और क्षीण मोह जीव होता है। विशेष इतना है वह क्षीण मोह के काल में आवली मात्र काल शेष रह जाने के पहले पहले ही हो जाता है, क्योंकि आवली रहने पर अभी उदीर्णा नहीं होगी, उसके पश्चात नहीं। क्योंकि उसकी स्थिति ही उतनी बाकी है, ख्याल में आती है। पांचवे नाम वो गोत्र प्रकृति रूप स्थान के स्वामी चरम आवली कालवर्ती क्षीण कषाय यानी बारहवें के अंतिम आवली में ही वो चालू हो जाता है, तथा संयोग केवली है। संयोग केवली को अंत तक लिया है, क्यों? उसके निषेक पड़े हैं ना ऊपर, उदीर्णा रुक जाएगी पर निषेक तो पड़े वहां पर। निषेक जब नहीं रहते हैं तब हम कहते कि आवली में वो आवली पहले ही रुक गई, पर जब आवली के ऊपर निषेक पड़े हैं नाम और गोत्र के, उसकी उदीर्णा होना रुक जाएगी। अभी उसके फिर स्वामित्व भुजकार ये सब अभी हम आगे अपना विषय पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ केवल इमेजिनरी हो जाएगा, वहाँ जो अभी तक पढ़ा है ना उसकी विस्तार से पढ़ेंगे बात तो और क्लियरिटी हो जाएगी। अपना पेज नंबर 41 है, 41 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं अभी। देखो यहाँ नया पैराग्राफ पहले कल हमने वो मंगलाचरण का अर्थ देखा था, फिर दोबारा देखते देखो, समस्त इंद्र समूह से वंदित और भव्य जीवों रूपी कमल वनखंड को अभिनंदित करने वाले अभिनंदन जिनेन्द्र को नमस्कार करके उपक्रम अनुयोग द्वार का कथन करते हैं। यहाँ पहले उपक्रम का निक्षेप कहते हैं, उसमें वो छह निक्षेप लगाएंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना वगैरह, वह इस प्रकार है, नाम उपक्रम, स्थापना उपक्रम, द्रव्य उपक्रम, क्षेत्र उपक्रम, काल उपक्रम और भाव उपक्रम। इस तरह उपक्रम छह प्रकार का है। नाम व स्थापना उपक्रम अवगत है, अवगत है ना, अभी ज्ञात है, ज्ञात है क्योंकि बहुत बार उसकी चर्चा हो चुकी है। द्रव्य उपक्रम भी हमने देखा, आगम नो आगम भेद होते हैं, आगम और नो आगम द्रव्य उपक्रम के भेद से दो प्रकार का है। हमने देखा आगम है ना, उसमें जो उसका ज्ञाता और उसमें उपयोग रहित, उपक्रम अनुयोग द्वार का ज्ञायक उपयोग रहित जीव आगम द्रव्योपक्रम कहलाता है। ये ख्याल में आती बात, ये हमने निक्षेप बहुत बार देखे हैं। नो आगम द्रव्य उपक्रम ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है। ज्ञायक शरीर में क्या लेना है, जानने वाले जीव का शरीर, वो शरीर भूतकाल का हो सकता है, वर्तमान का या भविष्य का भी हो सकता है। और फिर भावी यानी जीव को लेना, वो जीव अभी नहीं जान रहा है, भविष्य में जाने का। तद व्यतिरिक्त यानी जो जीव भी नहीं है और उसका शरीर भी नहीं है, तो वो आगम को जानने वाले हो नहीं सकते। तो तद व्यतिरिक्त में बताएंगे, इनमें ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्योपक्रम अवगत है, ज्ञात है। तद व्यतिरिक्त द्रव्योपक्रम दो प्रकार का है, यानी आगम को नहीं जानने वाला वो क्या हो सकता है, कर्म और नो कर्म, कर्मोपक्रम और नो कर्मोपक्रम। कर्मोपक्रम आठ प्रकार का है। नो कर्मोपक्रम सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। ये पहले प्रक्रम में भी हमने इसकी बात देखी थी और यहां उपक्रम में देख रहे हैं। क्षेत्र उपक्रम, ये कर्मोपक्रम है, कर्मों का वो जो संचय है, परंतु वो बंध के दूसरे समय से लेकर है। अब यह नौ कर्म में सचित्त अचित्त मिश्र जो हमने पहले भी देखे थे ना, हाँ वो हाँ अश्व वगैरह उसे सुवर्ण से युक्त अलंकारों से युक्त अश्व आदि उसकी चर्चा की थी वहां पर। अब क्षेत्र उपक्रम, जैसे ऊर्ध्वलोक उपक्रांत हुआ, ग्राम उपक्रांत हुआ, नगर उपक्रांत हुआ इत्यादि। देखो हमने प्रक्रम में भी देखा था ना, देखो 15 नंबर पर था कुछ ना, प्रक्रम अनुयोग द्वार, अच्छा 15 नंबर का पेज है, देखो नीचे नौ कर्म प्रक्रम में देखा ना, सचित्त अचित्त मिश्र अश्व और हाथियों को सचित्त प्रक्रम कहा, उनका प्रक्रम यानी उनका समूह, हिरण्य सुवर्ण आदि का प्रक्रम अचित्त प्रक्रम था और आभरण सहित हाथी अश्व उसको मिश्र प्रक्रम कहा था। अभी देखो क्षेत्र प्रक्रम में क्या लिया, ऊर्ध्वलोक प्रक्रम, अधोलोक प्रक्रम और तिर्यकलोक प्रक्रम, यानी ऊर्ध्वलोक में स्थित जीवों को ऊर्ध्वलोक कहेंगे, अधोलोक में स्थित जीवों को अधोलोक कहेंगे और उनका प्रक्रम यानी उनका समूह। अभी हम यहां देखते हैं, अभी उपक्रम में देखते हैं, यहां पर भी ऊर्ध्वलोक उपक्रांत हुआ, उपक्रम में जो उनके समूह में जो कुछ उनका, जैसे कर्मों में क्या देखा था बंधने के बाद उसमें जो व्यापार होता है, ऐसे यहां पर भी उस समूह में जो कुछ उनका व्यापार होगा उसको उसमें ले लेंगे। ग्राम उपक्रांत हुआ, नगर उपक्रांत हुआ इत्यादि। काल उपक्रम, जैसे वसंत उपक्रांत हुआ, हेमंत उपक्रांत हुआ इत्यादि, यानी वो चालू हो गया ना अभी उसका। भाव उपक्रम, आगम और नोआगम भाव उपक्रम के भेद से दो प्रकार का है, जैसे हमने द्रव्य के दो भेद किए वैसे भाव से। उपक्रम अनुयोग द्वार का ज्ञायक उपयोग युक्त जीव आगम भाव उपक्रम कहलाता है, जैसे प्रावृत उपक्रांत हुआ, पूर्व उपक्रांत हुआ अथवा वस्तु उपक्रांत हुई। हाँ, प्रावृत को जानने वाले जीवों की बात है। ज्ञायक जीव को लिया। शंका, इन उपक्रमों में यह औदयिक भाव की बात है। औदयिक आदि भावों के उपक्रम को नो आगम भाव उपक्रम कहते हैं, क्योंकि भावों की बात है ना यहाँ पर। इन उपक्रमों में यह कौन सा उपक्रम प्रकृत है? समाधान, यहाँ कर्मोपक्रम प्रकृत है, यानी कर्मोपक्रम की बात है यहाँ पर। जो वह कर्मोपक्रम है वह चार प्रकार का है, बंधन उपक्रम, उदीर्णा उपक्रम, उपशामना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम। फिर शंका, प्रक्रम और उपक्रम में क्या भेद है? समाधान, प्रक्रम अनुयोग द्वार प्रकृति स्थिति और अनुभाग में आने वाले प्रदेशाग्र की प्ररूपणा करता है। प्रदेशों को बताना है प्रकृति में, स्थिति में और अनुभाग में। परंतु उपक्रम अनुयोग द्वार बंध के द्वितीय समय से लेकर सत्व स्वरूप से स्थित कर्म पुद्गलों के व्यापार की प्ररूपणा करता है। यानी यहाँ प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध है, उसमें प्रदेशों की क्या पोजीशन है वो प्रक्रम बताता है। और सत्ता भी तीन प्रकार की होगी ना, कैसी? प्रकृति की सत्ता है, स्थितियों की सत्ता है, अनुभाग की सत्ता है, और उसमें जो प्रदेशों की बात बताई जाएगी वो तो उपक्रम में कहेंगे। तभी वो चार प्रकार का बताया है। देखो फिर पढ़ती हूँ इसको। प्रक्रम अनुयोग द्वार प्रकृति स्थिति और अनुभाग में आने वाले प्रदेशाग्र की प्ररूपणा करता है। परंतु उपक्रम अनुयोग द्वार बंध के द्वितीय समय से लेकर सत्व स्वरूप से स्थित कर्म पुद्गलों के व्यापार की प्ररूपणा करता है, इसलिए उन दोनों में विशेषता है। जो वह बंधन उपक्रम है वह चार प्रकार का है, प्रकृति बंधन उपक्रम, स्थिति बंधन उपक्रम, अनुभाग बंधन उपक्रम और प्रदेश बंधन उपक्रम। देखो बंधन उपक्रम में भी चारों लगाए हमने, प्रक्रम में तो अलग बात हुई थी। हाँ, यहाँ प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों में उपक्रम बताया, बंधन के चार प्रकार। दूध के साथ पानी के समान जीव प्रदेशों के साथ परस्पर में अनुगत यानी एक रूपता को प्राप्त प्रकृतियों के बंध के क्रम की प्ररूपणा करने को प्रकृति बंधन उपक्रम कहते हैं। बंध के क्रम की प्ररूपणा ली। अनंतर उन सत्व स्वरूप प्रकृतियों के एक समय से लेकर 70 कोणाकोणी सागरोपम काल तक कर्म स्वरूप से रहने के काल की प्ररूपणा को स्थिति बंधन उपक्रम कहते हैं। यानी बनते समय वो प्रकृति का बंधन हुआ, वो बंध कहलाएगा। अब एक बंध तो एक समय में हुआ, तो एक समय से लेकर वो सत्व रूप से कितने काल तक रहती है उसको स्थिति बंधन उपक्रम कहा। उन्हीं सत्व प्रकृतियों के जीव के साथ एकता को प्राप्त हुए अनुभाग संबंधी स्पर्धक वर्ग वर्गणा स्थान और अविभाग प्रतिच्छेद आदि की प्ररूपणा का नाम अनुभाग बंधन उपक्रम है। यानी सत्व संबंधी, सत्वों की जो अनुभाग को बताना, उन्हीं प्रकृतियों के क्षपित कर्मांशिक, गुणित कर्मांशिक, क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान जीवों का आश्रय करके हमने क्या देखा था, उसमें कितने कर्म सत्ता में, सत्व में उसका संचय कितना है उसको गिनते हैं। क्षपित कर्मांशिक में मिनिमम, गुणित कर्मांशिक में मैक्सिमम और बाकी दो इन बिटवीन। देखो गुणित घोलमान जीवों का आश्रय करके संचय को प्राप्त हुए, उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट प्रदेश की प्ररूपणा को प्रदेश बंधन उपक्रम कहा जाता है। इन चार उपक्रमों की प्ररूपणा जैसे सत्कर्म प्रकृति प्रावृत्त में की गई है, उसी प्रकार यहां भी करनी चाहिए। शंका, जैसी महाबंध में प्ररूपणा की गई है वैसी प्ररूपणा यहां क्यों नहीं की जाती? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उसका व्यापार प्रथम समय संबंधी बंध में ही है और उसका यहां कथन करना योग्य नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। इस प्रकार बंधन उपक्रम समाप्त हुआ, क्योंकि पहले समय में तो बंध की बात है, वो तो महाबंध में भी कहते हैं कितनी कितना बंध हुआ। अब उदीर्णा उपक्रम, वहां हमने चार देखे थे ना, बंधन उपक्रम, उदीर्णा उपक्रम, उपशामना उपक्रम और विपरिणाम, उसमें से ये उदीर्णा उपक्रम। तो उदीर्णा चार प्रकार की है, प्रकृति उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा और प्रदेश उदीर्णा। हम तो सामान्य से हमने उदीर्णा ऐसा कहा कि ऊपर से अपकर्षित होकर परमाणु नीचे आए, नीचे आना ये कहना वो स्थिति की अपेक्षा नीचे आए, परंतु उसके अनुभाग की अपेक्षा उसका अनुभाग घटना वो अनुभाग उदीर्णा में कहा जाएगा, उसकी बात बताएंगे। उनमें प्रकृति उदीर्णा, मूल प्रकृति उदीर्णा और उत्तर प्रकृति उदीर्णा के भेद से दो प्रकार की है। उनमें मूल प्रकृति उदीर्णा का कथन करते हैं वह इस प्रकार है। शंका, उदीर्णा किसे कहते हैं? समाधान, नहीं पके हुए कर्मों के पकाने का नाम उदीर्णा है। क्या बात है, आवली के बाहर की, आवली कहने से क्या है, उदयावली, आवली के बाहर की स्थिति को लेकर, यानी उदयावली के ऊपर के निषेकों से लेकर आगे की स्थितियों के बंधावली अतिक्रांत प्रदेशाग्रह को, ये अभी हमने विषय परिचय में यही परिभाषा पढ़ी थी, यानी उदयावली के ऊपर जितने निषेक है और प्रत्येक निषेक में परमाणु अलग अलग समय में बंधे हैं, तो जिनका बंध होकर एक आवली काल बीत गया है ऐसे प्रदेशाग्रह को, ऐसे परमाणुओं को असंख्यात लोक प्रतिभाग से अथवा पल्लोपम के असंख्यात वे भाग रूप प्रतिभाग से, प्रतिभाग से ने उससे भाग देकर जो एक भाग आएगा उसका आकर्षण करके उदयावली में देना, यह उदीर्णा कहलाती। अब मूल प्रकृति उदीर्णा दो प्रकार की है, एक एक प्रकृति उदीर्णा और प्रकृति स्थान उदीर्णा। यहां पहले एक एक प्रकृति उदीर्णा के स्वामित्व का कथन करते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीन कर्मों के, वहां उन्होंने विषय परिचय में थोड़ा बताया था, तो ज्ञानावरणीय का और दर्शनावरणीय का अंतराय मूल प्रकृति की बात है, क्योंकि हमने देखा था कि दर्शनावरण की कुछ प्रकृतियों का तो क्षय भी हो जाएगा, मतलब उसके बाद यहां नहीं लेंगे, वो बारहवें गुणस्थान के अंत में, मूल प्रकृति तो तीनों है। तो कहते कि मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत ये जीव उदीरक है। उसमें विशेषता क्या होगी, हमने देखा ना, एक आवली बाकी है तो उदीरना रुक जाएगी। विशेष इतना है कि क्षीण कषाय के काल में एक समय यदि कावली के शेष रहने पर इन तीनों प्रकृतियों की उदीरणा विच्छिन्न हो जाती है, विच्छिन्न हो जाती है, उदीरणा वहां है बाद में रुक जाती है, आवली प्लस एक समय होने तक वहां अंतिम उदीरणा हो जाएगी, जब आवली मात्र निषेक रह जाएंगे तो उदीरणा नहीं होगी। वेदनीय कर्म के मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक उदीरक है, यानी आगे उदीरक नहीं है। विशेष इतना है कि रहेगी रहेगी मोहिनी की रहेगी। अच्छा तीन प्रकार मैं उच्छिन्न विच्छिन्न पर चली गई मैं। देखो हमने अभी तीन प्रकृतियों की ज्ञान अंतराय की बात की, मोहनीय कर्म के मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक, वो म और प करना बराबर सांप्रायिक हुआ, सूक्ष्म सांप्रायिक तक उदीरक है। विशेष इतना है कि चढ़ते समय सूक्ष्म सांप्रायिक के काल में एक समय अधिक आवली के शेष रहने पर उदीरणा विच्छिन्न हो जाती है। हाँ आपका प्रश्न है सूक्ष्म सांप्राय में उपशम में भी आवली प्लस एक समय लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि उसके भी उपशमित हो रहे हैं ना ऊपर के सारे। उपशम है ना उसके भी ऊपर के नीचे नहीं आ सकते, इसी बात उसमें भी हो जाती है ना, समझ में आई ना। अभी उसमें अंतिम समय तक लेना कि नहीं लेना इसी बात उन्होंने नहीं उठाई है अलग से। ऐसे भी उसके और वो छह आवली का उदीरक कहाँ हो जाता है, नवे में होता है, तो इसने वो भी कंडीशन हाँ उसकी भी रुक जाएगी।
तो दवे का होता है तो दस्ते में उसी का बिना बिना जाए बिना जाएगा
कैसे,
नहीं तो यहाँ पे सूक्ष्म सांप्राय तक करता है
सुंदर सायंत्र, तो सूक्ष्म सांप्राय में आवली तक उसके उदीर्ण होगी, दसवें में सूक्ष्म लोभ की उदीर्ण होगी। यहाँ लिखा ना विशेषता इतनी कि चढ़ते समय सूक्ष्म सांप्राय के काल में एक समय अधिक आवली के शेष रहने पर उदीरणा विच्छिन्न हो जाती है। वेदिनी कर्म के वो छह आवली वाला वो बंद के बाद छह आवली की कंडीशन थी, बंद के बाद वाली बंद के बाद वाली, बंद के बाद वाली थी वो कंडीशन। नहीं वो बात छोड़ दो, वो चर्चा मत लाओ इसमें। अभी हम क्या सिंपल सोचो, मोहनी का उदय कब तक है, दसवीं, तो जब आवली प्रमाण शेष रह जाएगी निषेक तो अभी उसकी उदीरणा नहीं होगी, एक समय पूर्व तक थी अब नहीं रहेगी, बस इतना ही ले लो। ये हो गया विसूक्ष्म सांप्रय मोहनी के, वेदनीय कर्म के मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक उदीरक है, यानी छठे गुणस्थान तक। विशेष इतना है कि अप्रमत्त गुणस्थान के अभिमुख हुए, अभिमुख यानी सन्मुख हुए प्रमत्त संयत जीव के अंतिम समय में उसकी उदीरणा विच्छिन्न हो जाती है। देखो यहाँ आवली शेष रहने पर नहीं कहा, क्योंकि सत्ता में तो पड़े हैं निशे और छठे गुणस्थान के अंतिम समय तक उदीरणा होगी, बाद में नहीं होगी। मरण काल में, अब आयु की बात है, मरण काल में अंतिम आवली को छोड़कर शेष सब काल में आयु का उदीरक मिथ्या दृष्टि जीव होता है। हाँ क्यों कहा अभी वो भी बताएंगे, किंतु अन्य गुणस्थान को प्राप्त होने वाला जीव उस गुणस्थान के अंतिम समय तक उदीर्घ होता है। ये कहना चाहते हैं, कोई जो मिथ्यात्व में है वो मिथ्या दृष्टि रहने वाला है, तो आयु का उदीरक कब तक होगा मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हुए, मरण के एक आवली पूर्व बाकी तब तक। अब कोई ऐसा जीव लेना उसका मरण अभी दूर है परंतु मिथ्यात्व गुणस्थान में है और वो समय दृष्टि हुआ, तो आयु की उदीरणा कब तक करेगा, वो तो करता ही रहेगा ना, मिथ्यात्व से सम्यक्त में गया तो भी आयु की उदीरणा चालू ही है, तो उसके उस गुणस्थान के अंतिम समय तक उसका उदीरणा होगा ही होगा। उसने सम्यक्त प्राप्त किया उससे क्या हुआ, आयु की उदीरणा तो चल ही रही है।
छठे में वायु और उसकी उदीरना
क्या क्या
छठे
हम मिथ्या दृष्टि की बात करें ना,
जो मिथ्या दृष्टि सम्यक तो प्राप्त करेगा तो छठे गुणस्थान तक लेने का उदीरना।
हाँ, यानी वो गुणस्थान पलटा इसलिए उदीरना पहले रुकी ऐसा नहीं है ये कहना
चाहिए।
पहले से चौथे में गया, मिथ्या तो गुणस्थान में था, तो अभी मरण तो उसका दूर है अभी, तो उसकी उदीरना कब तक होगी? मिथ्या तो गुणस्थान के अंतिम समय तक, यानी केवल गुणस्थान पलटने से आयु की उदीरना रुकेगी नहीं, ये कहना चाहते हैं। फिर से देखो, मरण काल में अंतिम आवली को छोड़कर शेष सब काल में आयु का उदीरक मिथ्या दृष्टि जीव होता है, परंतु अन्य गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव होने वाला जीव उस गुणस्थान के अंतिम समय तक उदीरक होता है। यानी कहीं से भी वो तो जो उदीरक है अंतिम समय तक उसकी उदीरना चलेगी चलेगी, गुणस्थान पलटा इसलिए उसका उदीरना रुकेगी नहीं, ये उनको कहना है। इस प्रकार प्रमत्त संयत तक कहना चाहिए। यानी पहले उन्होंने क्या कहा, मिथ्या दृष्टि के लिए बताया कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में आयु के एक आवली यानी मरण के एक आवली पूर्व तक उसकी उदीरना होती है। अब मान लेते पहले वाला तीसरे में गया तो मिथ्या तो गुणस्थान के अंतिम समय तक होगा, पहले से चौथे में गया मिथ्या तो गुणस्थान के अंतिम समय तक उदीरना होगी आयु की, पहले से पांचवें में गया उसके अंतिम समय तक, पहले से सातवें में गया पहले गुणस्थान के अंतिम समय तक, ये तो कंडीशन हो गई। अब दूसरे गुणस्थान में बता, दूसरे गुणस्थान में जब तक दूसरे गुणस्थान में है अभी मरण नहीं आया है निश्चित, तो आयु की उदीरना दूसरे में चलेगी, जब पहले गुणस्थान में आएगा तो दूसरे में है तब तक उसकी उदीरना चलेगी। ऐसा भी होगा ना कि दूसरे गुणस्थान में आते एक समय में मरा है तो वहां तो उसकी उदीरना नहीं, क्योंकि एक समय में मरने वाले की आवली पहले उदीरना रुक गई थी। यानी हर एक गुणस्थान में ये लगा लो, तीसरे गुणस्थान में तो मरता भी नहीं है तो तीसरे गुणस्थान में तो उसका तो उदीरना चालू ही रहेगी, ये उन्होंने एक गुणस्थान में बताया। इसे हर एक गुणस्थान में समझो, ये कहां तक, छठे तक। इस प्रकार प्रमत्त संयत तक कहना चाहिए, क्योंकि उसके आगे आयु की उदीरणा नहीं है, इसका कारण स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है। क्यों नहीं होते तो क्या, ऐसा ही स्वभाव है। हमेशा ही वो छठे सातवें में जाते तो उनका क्या होगा, छठे से सातवें में गए उदीरणा रुक गई, सातवें से छठे में आए उदीरणा चालू हो गई, ऐसा ही होगा ना। नाम व गोत्र कर्म की उदीरणा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोगी केवली तक है। देखो आपका प्रश्न था ना, विशेष इतना है कि संयोग केवली के अंतिम समय में उदीरणा विच्छिन्न हो जाती है। अंतिम समय में क्यों, आवली पहले क्यों नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति अगर भी पड़े है, वो स्थिति वहां तक पड़ी है तो अंदर निषेक पड़े है, उन निषेकों में से उदीरणा होती रहेगी अंतिम समय तक, उदीरणा की विच्छित्ति अंतिम समय में होती है, बस इतना ही। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। एक जीव की अपेक्षा काल, यानी भले वो चौदहवें में उसका उदय हो या नहीं हो उससे कुछ मतलब नहीं, उदीरणा सबकी रुक गई। जैसे तेजस कारमान शरीर का उदय है कि चौदहवें वाले को, उदय है तो उसका बंद भी होगा, होना पड़ेगा। उदय तो तेरहवें के अंत तक है, औदारिक शरीर तेज शरीर कारवान शरीर का उदय, परंतु उसकी उदीरना भी वहां तक होगी, समझ में क्या, सत्ता में तो पड़े हैं, उदय नष्ट होने पर सत्ता में से नष्ट नहीं हो गए, सत्ता में तो नष्ट हो जाएगी अंतिम समय में जाके। उदय रुकता है तो योग भी रुकेगा ना, शरीर नाम कर्म का। अयोगी क्यों कहते हैं, शरीर नाम कर्म का उदय रुक गया है इसलिए अयोगी कहेंगे, योग नहीं है। क्यों नहीं है, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, उदीरना तेरहवें तक ही होगी, बाघ में चौदहवें में क्या होता है, उसकी सत्ता में पड़े है और उपांत समय में वो नष्ट हो जाएंगे, और चौदहवें में जो उदय है जिनका उदय है उसकी भी उदीर्णा नहीं होगी, और जो उनका है वो अंतिम समय में वो नष्ट हो जाएगी।
नष्ट तो कैसे हो, तो
क्षय क्षय होगी, नष्ट नहीं क्षय होगी। नहीं नहीं, वो एक एक निशय को उदय में आ रहा है ना, उदीर्ण होके पहले आता था, अभी उदीर्ण रुक गई है। एक एक निशय गलना तो चालू ही है ना, चौदहवें के अंतर्मुहूर्त में बस गलना ही चालू है। नहीं, योग के कारण नहीं, क्योंकि उदीर्ण का ऐसा स्वभाव है कि कौन से कर्म की उदीर्ण कहाँ तक होती है। योग नहीं होने से उदय रुक गया है, तो उदय नहीं होगा तो उदीर्ण भी नहीं होगी, एक बात। पर जिनका उदय चालू रहता है, कौन सा, पंचेंद्रिय जाति है, मनुष्य गति, उनका उदय है, उनकी भी उदीर्ण रुक जाती है। ये कहना चाहते हैं, ये यशक कीर्ति तीर्थंकर इन सबका उदय तो है, उदीर्ण रुक जाएगी। इसलिए नाम गोत्र, मूल प्रकृति में नाम गोत्र इतना ही कहा, उसके उत्तर प्रकृति कहेंगे तो जहां वो जितने वहां बच्चे हैं जो उदय रूप है उसकी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। अब एक युग की अपेक्षा काल कहेंगे। वेदनीय और मोहनीय का उदीरक जीव अनादि अपर्यवसित, पर्यवसान ने अंत, अपर्यवसान ने अनंत, अनादि अनंत, उसमें तीन भेद बताए एक जीव की अपेक्षा। अनादि अनंत किसके होगा, अभव्यों के होगा, क्योंकि अनादि अनंत काल बताए। अनादि सपर्यवसित, अनादि शांत, अनादि शांत, क्योंकि अभी वो ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा तो उसकी तो मिट जाएगी। और सादी सपर्यवसित होता है, सादी शांत, सादी शांत कैसे, मोहनीय का उदीरक कहाँ तक था हमारे, दसवें तक था, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है तो सादी, फिर दोबारा चढ़ेगा ये तो निश्चित है, तो सादी शांत कहेंगे उसको। जो सादी सपर्यवसित है, सादी सपर्यवसित यानी सादी शांत है, वह जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक उदीर्णा करता है। इसका कारण यह है कि अप्रमत्त यानी अप्रमत्त में वेदनीय की उदीर्णा रुक गई थी और फिर प्रमत्त होने पर चालू हो गई। अप्रमत्त उपशांत कषाय, उपशांत कषाय में मोहनीय की उदीर्णा रुक गई थी यानी वहां से नीचे आ गए तो सादी हो गई ना, जहां उनकी उदीर्णा नहीं थी। वेदनीय के लिए अप्रमत्तादि में गया तो उसकी उदीर्णा नहीं हो रही थी, अप्रमत्त सातवें से नीचे आया तो उदीर्णा शुरू हुई, तो उदीर्णा की सादी हो गई। वैसे ही ग्यारहवें से दसवें में आया उदीर्णा शुरू हो गई, तो गुणस्थान से नीचे गिरकर और सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल तक वहां रहकर फिर से अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुए जीवों के, यानी उसके लिए वेदनीय, जैसे सातवें से छठे में आया और फिर सातवें में गया तो अंतर्मूर्त सादी शांत उदीर्णा हुई और फिर रुक गई। सादी यानी आदि हुई फिर अंत हुआ, तो छठे सातवें में वो तो सादी शांत चलता रहेगा। और मोहनी के लिए जो ग्यारहवें से दसवें में आया उदीर्णा शुरू हुई तथा एक समय अधिक आवली स्वरूप सूक्ष्म सांप्रायिक के अंत समय को न प्राप्त हुए, अर्थात सूक्ष्म सांप्रायिक के काल में एक समय अधिक आवली के अवशिष्ट रहने के पूर्व समयवर्ती जीवों के, देखो पहले तो वेदनी के लिए बताया छठे में आया और फिर वापस सातवें में गया उसके लिए, और जो ग्यारहवें से गिरा, ग्यारहवें से गिरा फिर दसवें में उदीरना चालू हो गए, दसवां नौवां आठवां सातवां फिर छठे में गया, छठा सातवां करके फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ी और दसवें में आवली और एक समय बाकी है वहां फिर उसकी उदीर्णा रुक गई, उस वो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त कहलाएगा यथाक्रम से। यानी हमने क्रम बता दिया वेदनीय और मोहनीय कर्म की, अंतर्मूर्त काल प्रमाण उदीर्णा पाई जाती है। हमें लगा उसने तो इतने गुणस्थान पार किया है, उसने अकेला छठा किया, यथा योग्य अंतर्मूर्त होगा। अब उत्कृष्ट से बताना है, ये सादी शांत का उत्कृष्ट यानी ऐसा जीव लेना है जो सातवें से छठे में आया और छठे से मिथ्यात्व में चला गया। तो अभी उसका तो अर्ध पुद्गल में मोक्ष जाने वाला है, तो मोक्ष के पहले जब वो संयम धारण करेगा और छठे से सातवें में फल, यानी पहले तो सातवें में चला जाएगा, पहले से सातवें में गया तो उसके उदीर्णा का अंत हो गया डायरेक्ट, फिर नीचे आने की जरूरत नहीं है। आएगा फिर जाएगा अंतर्मूर्त में मोक्ष, उसकी बात नहीं करनी है। यानी वो पहली बार उसने संयम के साथ समय को प्राप्त किया कि सातवें से नीचे आए छठे में, छठे से मिथ्यात्व में चला गया, तो इन्हें सातवां उसके नीचे आते ही उसका तो उदीर्णा चालू हो गई, उदीर्णा की शादी हो गई। कब तक? अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो भटकता रहा, संयम कभी धारण ही नहीं किया उसने, बीच में कभी समय दृष्टि हुआ तो भी संयम धारण नहीं किया, तो उसकी उदीर्णा चालू रही। अंतिम भव में जब संयम धारण करेगा तो पहले से सातवें में भले गए तो उसके वो उदीर्णा रुक जाएगी। वो सादी शांत काल इतना बड़ा, कुछ कम उपार्ध, जिसको उपार्ध कहते हैं, उपार्ध पुद्गल परावर्तन, उपाय ने कुछ कम नजदीक वाला, उत्कर्ष से ने उदीर्णा का जो उत्कृष्ट काल कह रहे, सादी शांत का उत्कृष्ट काल दोनों कर्मों का उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक उदीर्णा करता है। उदीर्णा लगातार करने का काल लिया यहाँ पर, क्योंकि एक क्रम से बताना है, अप्रमत्त और उपशांत कषाय गुणस्थान से नीचे गिरकर वो उपार्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके यथाक्रम से अपने अपने गुणस्थान को प्राप्त होकर वहां उदीर्णा की विच्छित्ति करने पर, फिर दोबारा जो सातवें में चला जाएगा उसकी तो वेदिनी की उदीर्णा की विच्छित्ति हो जाएगी, और जो ऊपर के गुणस्थान दसवें में लास्ट आवली में प्राप्त करेगा तब उसके तो मोहनी की हो जाएगी उदीर्णा विच्छित्ति हो जाएगी। उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल पाया जाता है। अब आयु की बात है, आयु कर्म की उदीर्णा का काल जघन्य से एक अथवा दो समय है। देखो कैसे गठित करना, आयु की उदीर्णा कब तक होती है? छठे तक होती है। तो आयु की उदीर्णा एक समय हुई, ये कब पॉसिबल है? जरा शांति रखो, ये इन लोगों को विचार करने दो। एक तो मरण के पहले आवली काल पहले उसकी उदीर्णा रुक जाती है, एक बात है, और दूसरे छठे गुणस्थान के ऊपर उसकी उदीर्णा नहीं होती। सादी शांत काल घटित करना है। सादी कब शुरू हो गई?
उदीर्णा चालू हुई तब।
चालू हुई उदीर्णा या तो जब नए भव में गए तो उदीर्णा चालू हो गई, वो तो एक समय में कोई मर नहीं सकता है, वहां तो आउट ऑफ क्वेश्चन। बाकी उदीर्णा कब रुकती है? सातवें में जाने पर। फिर चालू कब होती है? सातवें से नीचे आने पर। तो एक समय बताओ कैसा होगा? अरे नहीं नहीं, शासाधन में क्यों, आयु की उदीर्णा एक समय में हुई और रुक गई। देखो देखो, ऐसा जीव है जो सातवें से छठे में आया और उसका आवली प्लस एक समय काल बाकी है मरण का, मरण के एक आवली पहले रुकती है ना, एक समय तक उदीर्णा हुई, अब आवली काल शेष रहा, ये छठे में एक समय बिताया, छठे में उदीर्णा के साथ और आवली बिताई बिना उदीर्णा के, हाँ, और तब मरण हुआ। एक समय के लिए उदीर्णा हुई थी उसकी, इस तरह जितनी आयु शेष है ना उसमें आवली प्लस एक समय, आवली प्लस दो समय, आवली प्लस एक समय काल बाकी था जीवन का। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो, आयु कर्म की उदीर्णा का काल जघन्य से एक अथवा दो समय है, कारण कि अप्रमत्त जीव प्रमत्त हो जघन्य से एक समय ही आयु का उदीरक होकर द्वितीय समय में आयु का अनुदीरक होता है। किसका है जरा देख लो पहले,
हाँ
उनिंद, हाँ तो उसमें हाँ अब जरा 97 पर फोन करके इनको बताना कि उन्हें इनका फोन आया था नंदू का 97 वाला नंबर है ना आपके पास उन पर बोलना 97 पर फोन करना हाँ बैंक में गए बताना नंदू भैया क्या बोलो तेजल वो बैंक में गए बोलो नंदू थे उनीन थे हाँ हाँ बोलो उनको हाँ आयु कर्म की उदीर्णा का काल जघन्य से एक अथवा दो समय है ना कारण कि अप्रमत्त जीव प्रमत्त हो जघन्य से एक समय ही आयु का उदीरक होकर द्वितीय समय में आयु का अनुदीरक होता है जो आचार्य उदयावली मात्र स्थिति विशेष की प्ररूपणा करते हैं उनके अभिप्राय से उदीरणा का काल जघन्य से एक समय मात्र होता है यानी ऐसे भी आचार्य बताते कि एक समय भी हो सकता है करके किंतु जो आचार्य जघन्य से दो समय उदीर्णा करता ऐसा कहते हैं उनके अभिप्राय से दो समय मात्र जघन्य काल की प्ररूपणा की गई है यानी ऐसे भी मानते हैं कोई दो समय होता है एक समय नहीं हो सकता ऐसे कहने वाले भी होते हैं तो उनकी अपेक्षा
से मिनिमम लिया
वैसे तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है यानी उन्होंने मिनिमम ही दो समय स्वीकार किया है किसी किसी ने बस वो जानना है हमको बस इतना ही अभी उसका उत्कृष्ट है मिनिमम काल बताए एक या दो समय अब मैक्सिमम काल कितना होगा अब बड़ी आयु लेना है और आवली उसमें कम करना है तो आयु का उदीर्णा काल उत्कर्ष से एक आवली हीन 33 सागरोपम प्रमाणे आयु इतना ही लेना है हमको आयु क्योंकि हम मूल प्रकृतियों की बात है जिसकी बड़ी आयु होगी उतना हम ले सकते हैं ऐसा देखो आपका प्रश्न है कि दो समय और आवली के बाद ही मरण होगा ऐसा है क्या ऐसा नहीं है क्योंकि छठे गुणस्थान का एक समय काल भी है छठे से सातवें से छठे में आया और एक समय में मरा ये भी हो सकता है ये नहीं हो सकता ये बात नहीं है
तो यहाँ पे दो समय के लिए कोई कारण
नहीं बस उनका कहना है ऐसा ही दो समय हाँ देखो अभी ये बताए ना एक आवली कम 33 साल क्योंकि उदयावली के भीतर प्रविष्ट स्थितियों की उदीर्णा संभव नहीं है यानी 33 सागर के अंत में जब आवली प्रमाण निषेक बाकी है अब उसकी उदीर्णा रुक जाती है ये उसका कहना है शेष कर्मों का उदीरक वेदनी हो गई बात मोहनी की बात हो गई आयु की बात हो गई अब शेष कर्मों का उदीरक अनादि अपर्यवसित जीव होता है यानी अनादि अनंत हाँ यह भंग क्षपक श्रेणी पर न चढ़ने वाले जीवों के संभव है तथा इन्हीं शेष कर्मों का उदीरक अनादि सपर्यवसित जीव भी होता है किंतु क्षपक श्रेणी पर चढ़कर उदीर्णा को नष्ट करने वालों के यही भंग होता है इस प्रकार काल समाप्त हुआ क्या कहना चाहते हैं नाम और गोत्र की उदीर्णा कब तक होती है तेरवे के अंत तक तो कहते कि उसमें सादी शांत भंग होगा क्या
नहीं।
देखो ये कौन सा भंग बताया अनादि अपर्यवस्थित अनादि का है, शेष कर्मों का उदीरक अनादि है, उसमें शादी वाला भंग नहीं होता। क्योंकि शादी वाला भंग किसको होगा, एक तो वेदनीय का नीचे आने वाले के, आयु का और मोहनीय का, बाकी जो है जो बारहवें तक जो चलेंगे ज्ञानावरण आदि की बात है। हाँ, तो बारहवें के अंत तक जो घटित होता है उसके बाद यहाँ ये इनकी घटित नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। ख्याल में आई बात? यानी उसमें भी बारहवें के अंत के लिए उन्होंने दो ही बताए, कौन से ना ना अनादि अपर्यवसित, जो क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता उसके लिए, जो क्षपक श्रेणी पर नहीं चढ़ता है उसके लिए अनादि अनंत। हाँ, और अभी कहेंगे यानी शादी वाला तो उसमें है ही नहीं, शेष कर्मों के उदीर नाम और गोत्र के उदीरक जो है वो अनादि के है, परंतु वो नियम से शांत होने वाले, क्योंकि केवल यानी सयोग केवल के अंतिम समय में उसकी उदीरना नष्ट हो जाती है। ख्याल में आई बात? इस काल समाप्त हुआ, अभी काल तो अभी हम भी समाप्त करेंगे। समय हो गया। तो शेष कर्मों में आ गए ना वो। हाँ हाँ हाँ, शेष कर्मों में आ गए। जो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ते ना उसके लिए उसकी बात है, अनादि अनंत वाली बात। अब यही रुकेंगे हम, कल को भी पूछ कर आना जरा। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।